एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है।
आज हम एक ऐसी संस्था की गहराई में उतरेंगे जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अक्सर आप कह सकते हैं एक पहेली जैसी लगती है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट।
हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हम आज बात कर रहे हैं लिंडा ग्रीनहाउस के किताब यूएस सुप्रीम कोर्ट पर। लिंडा ग्रीनहाउस ये वो नाम है जिन्होंने दशकों तक इस कोर्ट को नजदीक से देखा है, समझा है।
और ये समझना आज क्यों जरूरी है? देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम चुने हुए नेताओं की बात करते हैं, है ना?
हाँ,
लेकिन यहां 9 जज हैं, उन्हें चुना नहीं जाता और वो जीवन भर के लिए नियुक्त होते हैं,
पूरी जिंदगी के लिए।
फिर भी उनके पास कानूनों को बदलने या कहें कि रद्द करने की इतनी ज्यादा शक्ति है, तो ये कैसे मुमकिन है?
सही बात है, खासकर आज के दौर में जब आप देखिए दुनिया भर में संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर बात हो रही है, तब ये जानना तो वाकई दिलचस्प है कि ये कोर्ट आखिर काम कैसे करता है।
हाँ, और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। जैसा आपने कहा, इस कोर्ट के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर, यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन पर भी पड़ सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही। सही,
तो चलिए इस संगमरमर के महल के दरवाजे जरा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर असल में है क्या।
बिल्कुल। शुरुआत करते हैं लेखिका से, लिंडा ग्रीनहाउस। ये कोई साधारण पत्रकार नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए सोचिए 30 साल, 1978 से 2008 तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कवर किया।
30 साल एक ही विषय पर, कमाल है।
हाँ, और इसी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए उन्हें पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिला 1998 में।
अच्छा।
और बाद में वो येल लॉ स्कूल जैसी प्रतिष्ठित जगह पे पढ़ाने भी लगीं। तो उनकी खासियत ये है कि उनमें एक पत्रकार की पैनी नज़र है, तथ्यों पर पकड़ है, लेकिन साथ ही एक विद्वान वाली गहरी समझ भी है उस संस्था की।
उन्होंने जजों को आते जाते देखा होगा, कितने ऐतिहासिक फैसले बनते देखे होंगे, पर्दे के पीछे की कहानियां भी जानती होंगे।
बिल्कुल, उनकी एक और किताब है बिकमिंग जस्टिस ब्लैकमून, वो भी दिखाती है कि वो कैसे कानूनी बारीकियों के साथ साथ जजों के आपसी रिश्तों को, उनके व्यक्तित्व, मतलब मानवीय पहलुओं को भी कितनी आसानी से समझा सकती हैं।
तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसी पेचीदा संस्था को समझने के लिए शायद उनसे बेहतर गाइड मिलना मुश्किल है।
अब आते हैं किताब पर, द यूएस सुप्रीम कोर्ट। जैसा आपने पहले कहा, ये कोई भारी भरकम कानूनी पोथा नहीं है।
नहीं,
ये एक तरह की परिचयात्मक गाइड है, इंट्रोडक्टरी गाइड, आम नागरिकों के लिए, छात्रों के लिए, या कोई भी जिसे अमेरिकी सिस्टम में रुचि हो।
तो किताब का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ ये बताती है कि कोर्ट कैसे काम करता है?
हाँ, वो तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इसका मकसद है उस रहस्य के पर्दे को हटाना जो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द है। हमें लगता है ना कि वो कोई बहुत ऊंची दैवीय सी जगह है जहां सिर्फ शुद्ध कानून की बातें होती हैं।
हाँ, एकदम सही।
लेकिन ग्रीनहाउस दिखाती है कि नहीं, ये एक जीती जागती इंसानी संस्था है। इसका अपना इतिहास है, काम करने का एक तय तरीका है, इसमें लोग हैं, उनके व्यक्तित्व हैं, और ये अमेरिका के राजनीतिक और सामाजिक माहौल से गहराई से जुड़ी हुई है।
मतलब कानून और राजनीति का मिश्रण।
बिल्कुल। और किताब का एक केंद्रीय विचार जो मुझे तो बहुत महत्वपूर्ण लगा, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपार शक्ति है ना, वो असल में बड़ी नाजुक है।
नाजुक? इतनी शक्ति और नाजुक, ये कैसे?
ऐसे कि उसके पास अपनी कोई पुलिस या सेना तो है नहीं कि वो अपने फैसले लागू करवा सके। उसकी शक्ति टिकी है वैधता यानी लेजिटिमेसी पर, इस भरोसे पर कि लोग, सरकार की दूसरी शाखाएं, राज्य, सब उसके फैसलों को मानेंगे।
अच्छा, तो ये वैधता कमानी पड़ती है।
हाँ, हर फैसले के साथ किताब इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है कि एक लोकतंत्र में बिना चुने हुए 9 लोग इतनी शक्ति आखिर रखते कैसे हैं, और ये शक्ति कैसे बनी, कैसे इस पर सवाल उठे, और कैसे ये आज तक कायम है। ये सिर्फ कानून नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि दोनों का एक एक जटिल ताना बाना है।
तो चलिए, आप किताब के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद कोर्ट की नींव से।
हाँ बिल्कुल, नींव, और वो कॉन्सेप्ट जिसने इसे इतनी शक्ति दी, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। और मजे की बात यह है कि जब अमेरिकी संविधान बना तो उसमें न्यायपालिका के बारे में बहुत ही कम लिखा गया था। आर्टिकल 3 बस एक ढांचा सा बताता है, शक्तियों का ज्यादा जिक्र नहीं।
अच्छा, तो फिर ये सारी शक्ति आई कहां से? संविधान में नहीं थी तो?
उसे हासिल करना पड़ा। कोर्ट ने खुद इसे स्थापित किया और ये हुआ 1803 के एक बहुत मशहूर केस में, मार्बरी बनाम मैडिसन। कहते हैं इस केस ने सब कुछ बदल दिया।
मार्बरी बनाम मैडिसन, हाँ सुना इसके बारे में।
लिंडा ग्रीनहाउस बताती हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने कमाल की राजनीतिक सूझबूझ दिखाई। उन्होंने सीधे सीधे तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन से टकराव नहीं लिया, लेकिन एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भविष्य के लिए कोर्ट को यह अधिकार दे दिया कि वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए या राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून को संविधान के खिलाफ बताकर रद्द कर सकता है।
अरे वाह, तो ये है न्यायिक समीक्षा की शुरुआत। मतलब ये शक्ति दी नहीं गई, कोर्ट ने इसे हासिल किया और धीरे धीरे ये स्वीकृत हो गई।
बिल्कुल, और इसी शक्ति ने कोर्ट को अमेरिकी सरकार की एक कमजोर कड़ी से उठाकर बाकी दो शाखाओं, कांग्रेस और राष्ट्रपति के बराबर ला खड़ा किया।
और शायद इसीलिए बाद में कोर्ट की वो भव्य इमारत बनी जिसे मार्बल पैलेस कहते हैं। वो इसी बढ़ी हुई शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है।
सही कहा। तो ये तो हुई कहानी कि कैसे एक मामूली शुरुआत से कोर्ट इतना ताकतवर बना।
अब आते हैं उन लोगों पर जो इस कोर्ट को चलाते हैं। वो 9 जस्टिस यानी न्यायाधीश, ये कौन होते हैं और यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं?
किताब बताती है कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति द्वारा नामांकन और फिर सीनेट द्वारा पुष्टि, अब एक कहना चाहिए कि भयंकर राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है।
राजनीतिक अखाड़ा मतलब?
मतलब ये कि पहले शायद काबिलियत, अनुभव या देश के अलग अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व देने पर ज्यादा ध्यान होता था, लेकिन अब सारा जोर जज के न्यायिक दर्शन पर होता है कि वो संविधान की व्याख्या कैसे करते हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। नियुक्ति प्रक्रिया में ही इतनी कड़वाहट आ जाती है।
हाँ, ये तो आजकल खबरों में भी रहता है।
और फिर है इनका आजीवन कार्यकाल, लाइफ टेन्योर, यानी एक बार नियुक्त हो गए तो जब तक चाहें या जब तक सेहत इजाजत दे तब तक पद पर रहेंगे।
इसका मकसद तो अच्छा था शायद, कि जज बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के फैसले लें।
हाँ, मूल मकसद तो यही था कि उन्हें दोबारा चुने जाने या नौकरी जाने का डर ना हो। लेकिन ग्रीन हाउस बताती है कि आज इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हैं।
जैसे कि?
जैसे कई जज अपनी रिटायरमेंट का समय राजनीतिक हिसाब से तय करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जगह जो नया जज आए उसे उनकी विचारधारा वाला राष्ट्रपति ही नियुक्त करे।
अच्छा, तो इससे हर एक नियुक्ति का महत्व बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
बिल्कुल, और क्योंकि जज दशकों तक पद पर रहते हैं, एक राष्ट्रपति की पसंद का असर सालों दशकों तक महसूस होता रहता है।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 9 लोग सिर्फ कानून की मशीनें नहीं हैं, इंसान हैं।
हाँ, यही बात। ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर, जो खुद एक महान जज थे, उन्होंने एक बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक बोतल में 9 बिच्छू है।
9 बिच्छू?
ये क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि उनके आपसी रिश्ते, उनकी दोस्ती, उनकी प्रतिद्वंदिता, ये सब भी कहीं ना कहीं फैसलों पर असर डाल सकते हैं।
किताब में जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग और जस्टिस एंटोनिन स्कालिया की दोस्ती का जिक्र है। दोनों विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन गहरे दोस्त थे।
हाँ,
तो ये मानवीय पहलू कोर्ट के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। और चीफ जस्टिस की भूमिका भी खास होती है। वो बराबरों में पहले होते हैं। वो बहस का रुख मोड़ सकते हैं या ये तय कर सकते हैं कि बहुमत की राय लिखने का महत्वपूर्ण काम किसे सौंपा जाए।
चलिए, अब देखते हैं कि कोर्ट असल में काम कैसे करता है, प्रक्रिया क्या है, रोजमर्रा का काम। तो कोर्ट सुनता है कितने? सब तो नहीं सुन सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम, शायद 100 से भी कम। तो इतनी सारी याचिकाओं में से कोर्ट कौन से सुनेगा, ये कैसे तय होता है?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
यहाँ लॉ क्लर्कों की भूमिका बहुत अहम होती है। ये युवा बहुत होशियार वकील होते हैं जो जजों की मदद करते हैं। वो याचिकाओं को पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और मेमो तैयार करते हैं।
अच्छा, क्लर्क ये सब करते हैं?
हाँ, शुरुआती छंटाई में उनका बड़ा रोल है, लेकिन अंतिम फैसला जजों का होता है। और इसके लिए एक अनौपचारिक नियम है जिसे रूल ऑफ 4 कहते हैं।
रूल ऑफ 4, ये क्या है?
इसका मतलब है कि किसी केस को सुनने के लिए 9 में से सिर्फ 4 जजों की सहमति काफी है, बहुमत की जरूरत नहीं।
अरे, सिर्फ 4 की सहमति? ये तो बहुत दिलचस्प है।
हाँ, ये कोर्ट की गेटकीपिंग पावर को दिखाता है। कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बनेगा, ये तय करने में कोर्ट की बड़ी भूमिका है। और जैसा मैंने कहा, किसी केस को ना सुनना भी अपने आप में एक बड़ा फैसला हो सकता है।
समझ गया। तो जो केस चुन लिए जाते हैं उनका क्या होता है?
उनकी फिर पूरी प्रक्रिया होती है, दोनों पक्षों के वकील लिखित दलीलें, जिन्हें ब्रीफ्स कहते हैं, वो जमा करते हैं, फिर होती है मौखिक बहस।
हाँ, वो टीवी में दिखाते हैं कभी कभी, नहीं शायद नहीं दिखाते।
नहीं, ये बहसें आमतौर पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं होती, ये काफी औपचारिक होती हैं। वकील अपनी बात रखते हैं और जज उनसे तीखे सवाल पूछते हैं, ये एक तरह का बौद्धिक द्वंद्व होता है।
और इसके बाद?
और बहस के बाद आता है सबसे गुप्त हिस्सा, जजों की कॉन्फ्रेंस। यहाँ सिर्फ 9 जज होते हैं, कोई स्टाफ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, एकदम निजी।
बिल्कुल सीक्रेट।
हाँ, यहीं पर वो केस पर चर्चा करते हैं, अपना शुरुआती वोट डालते हैं और ये तय करते हैं कि बहुमत की राय कौन लिखेगा।
बहुमत की राय मतलब जो फैसला होता है।
हाँ, जो फैसला कानून बन जाता है। लेकिन किताब में अलग अलग तरह की रायों का भी जिक्र है। बहुमत की राय मेजॉरिटी ओपिनियन के अलावा सहमति वाली राय भी हो सकती है।
सहमति वाली मतलब जज सहमत है लेकिन।
हाँ, जज बहुमत के नतीजे से तो सहमत है, पर शायद कारण अलग देना चाहता है या किसी और बात पर जोर देना चाहता है। और फिर होती है असहमति की राय, डिसेंटिंग ओपिनियन।
जो जज फैसले से सहमत नहीं हैं उनकी राय।
ये क्यों महत्वपूर्ण है? फैसला तो बहुमत का ही माना जाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि असहमति की राय भविष्य के लिए एक रास्ता खोल सकती है। हो सकता है आज जो बात अल्पमत में है वो कल समाज या कानून की नजर में सही साबित हो।
दशकों बाद शायद वही बहुमत का नजरिया बन जाए। ये भविष्य के वकीलों और जजों के लिए तर्क तैयार करती है। एक तरह से ये भविष्य के लिए लिखा गया एक नोट होता है।
कमाल है। तो ये तो हुई कोर्ट की अंदरूनी कार्यप्रणाली, लेकिन इसका रिश्ता सरकार की दूसरी शाखाओं, कांग्रेस और राष्ट्रपति और बाहरी दुनिया से कैसा है? क्या ये वाकई सबसे ऊपर है जैसा लगता है?
किताब इस पर भी रोशनी डालती है। अमेरिकी सिस्टम में नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत है, तो कोर्ट सर्वशक्तिमान नहीं है।
कैसे? क्या मतलब?
देखिए, अगर कोर्ट किसी कानून को रद्द कर दे तो कांग्रेस नया बेहतर कानून बना सकती है या संविधान में संशोधन भी प्रस्तावित कर सकती है। ऐसा हुआ भी है, जैसे 16वां संशोधन जिसने इनकम टैक्स की इजाजत दी, वो इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने पहले से असंवैधानिक ठहरा दिया था।
हाँ ये तो है। और कांग्रेस के पास कोर्ट का बजट कंट्रोल करने और जजों की संख्या बदलने तक की शक्ति है ना? हालांकि उसका इस्तेमाल कम ही होता है।
है, बल्कि कोर्ट के फैसलों को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी अंततः उन्हीं की होती है।
वो किस्सा याद है राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन का, जिन्होंने कोर्ट के एक फैसले पर कथित तौर पर कहा था, जॉन मार्शल ने अपना फैसला सुना दिया है, अब उसे लागू करने दो।
हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोर्ट के फैसले अपने आप लागू नहीं हो जाते, उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, तो एक निरंतर संवाद और शक्ति का लेन देन चलता रहता है।
अब बात करते हैं कोर्ट और जनता के रिश्ते की। यहीं पर वो वैधता लेजिटिमेसी का नाजुक धागा आता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था।
हाँ, कोर्ट की असली ताकत, जैसा हमने कहा, जनता के भरोसे पर टिकी है।
कोर्ट अपनी परंपराओं से जजों के वो काले रोब, इमारत की भव्यता और औपचारिक प्रक्रियाओं के जरिए ये जताने की कोशिश करता है कि वो रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर है, निष्पक्ष है।
कोशिश तो यही रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़े फैसले, खासकर वो जो समाज को बांटते हैं, वो अक्सर राजनीतिक या वैचारिक लाइन पर ही लिए जाते हैं। जैसे 5-4 के वोट से कोई फैसला आता है तो सवाल उठते हैं।
और मीडिया भी इसमें भूमिका निभाता है कि जनता कोर्ट को कैसे देखती है।
बिल्कुल, किताब बुश बनाम गोर 2000 के राष्ट्रपति चुनाव वाले केस का उदाहरण देती है। उस फैसले ने कोर्ट पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए और उसकी साख को कहना चाहिए कि धक्का लगा।
हाँ वो तो बहुत विवादास्पद था।
तो आज जब अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है, कोर्ट के लिए अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसे न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक संतुलन साधना होता है।
अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, संविधान की व्याख्या और सामाजिक बदलाव। अमेरिकी संविधान 200 साल से ज्यादा पुराना है।
हाँ,
जाहिर है वो आज के हर मुद्दे पर, जैसे टेक्नोलॉजी या निजता के नए सवाल, उन पर साफ साफ कुछ नहीं कहता।
जी,
तो यहाँ कोर्ट की भूमिका क्या है?
यही कोर्ट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका काम है संविधान का आज के संदर्भ में क्या मतलब है इसकी व्याख्या करना। ग्रीनहाउस कहती हैं कि कोर्ट सिर्फ एक अंपायर नहीं है जो गेंद और स्ट्राइक बताता है, बल्कि वो खेल के नियमों की व्याख्या भी करता है। वो बताता है कि संविधान क्या कहता है।
और इस व्याख्या के तरीके भी अलग अलग हैं।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग दर्शन हैं। कुछ जज मूलवाद, ओरिजिनलिज्म में विश्वास रखते हैं, यानी संविधान का वही मतलब निकालना चाहिए जो इसके बनाने वालों ने, फाउंडिंग फादर्स ने सोचा होगा। जस्टिस एंटोनिन स्कालिया इसके बड़े पैरोकार थे।
अच्छा, और दूसरा तरीका?
दूसरी तरफ है जीवंत संविधानवाद, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये मानता है कि संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है और इसकी व्याख्या आज के बदलते समाज और मूल्यों के हिसाब से होनी चाहिए। जस्टिस विलियम ब्रेनन इस सोच के थे।
तो ये दो मुख्य विचारधाराएं हैं
मोटे तौर पर। हाँ, इनके अलावा पाच्यवाद यानी सिर्फ कानून के शब्दों पर ध्यान देना, और व्यवहारवाद यानी व्यवहारिक नतीजों पर ध्यान देना जैसे तरीके भी हैं। ये अलग अलग सोच तय करती है कि निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, बराबरी जैसे मुद्दों पर कोर्ट क्या फैसला लेगा।
तो ये व्याख्या कोई स्थिर चीज नहीं है, ये बदलती रहती है।
बिल्कुल, ये अतीत के शब्दों और आज के मूल्यों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। ग्रीनहाउस का एक विचार जो मुझे याद रह गया वो ये है कि संवैधानिक व्याख्या पुरातत्व नहीं है, ऐतिहासिक कलाकृतियों में दबे मूल अर्थ की खोज नहीं, बल्कि यह अतीत और वर्तमान के बीच एक सतत बातचीत है।
बहुत खूब कहा। और सामाजिक बदलाव में कोर्ट की भूमिका, क्या कोर्ट समाज को बदलता है?
ये भी सीधा साधा नहीं है। कभी कोर्ट समाज से आगे चलता है, जैसे ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 में स्कूलों में नस्लीय अलगाव को खत्म करके। ये फैसला उस वक्त समाज के बड़े हिस्से को मंजूर नहीं था, लेकिन कोर्ट ने एक स्टैंड लिया।
तो क्या कोर्ट हमेशा समाज को रास्ता दिखाता है?
नहीं, ऐसा भी नहीं है। कभी वो समाज में आ रहे बदलावों को कानूनी मान्यता देता है, जैसे समलैंगिक अधिकारों पर लॉरेंस बनाम टेक्सास 2003, या बाद में विवाह समानता पर जो फैसले आए, वो समाज में पहले से चल रहे बदलावों को दर्शाते हैं।
लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। ब्राउन का फैसला आ गया, पर उसे जमीन पर उतारने में सालों लग गए।
बिल्कुल, उसके लिए नागरिक अधिकार आंदोलन और राष्ट्रपति की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ी। कोर्ट अकेले समाज नहीं बदल सकता, उसे बाकी समाज और सरकार के सहयोग की जरूरत होती है।
किताब आधुनिक कोर्ट के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी भी बात करती है।
हाँ, जजों के बीच बढ़ती वैचारिक कड़वाहट, उनका लंबा कार्यकाल और आम लोगों में ये धारणा बढ़ना कि कोर्ट भी बस एक और राजनीतिक खिलाड़ी है, ये सब उसकी वैधता के लिए खतरा है। साथ ही टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण जैसे नए मुद्दे भी हैं जिनसे कोर्ट को निपटना है।
तो ग्रीनहाउस का निचोड़ क्या है?
निचोड़ यही है कि कोर्ट अमेरिका की कहानी का एक आईना है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें कुछ पॉइंट्स में समेटना हो?
मेरे लिए सबसे बड़ा संदेश है कानून और राजनीति का वो अटूट रिश्ता, वो तनाव। ग्रीनहाउस साफ कहते हैं कि ये पूछना ही गलत है कि कोर्ट कानूनी है या राजनीतिक।
हाँ, ये बात मुझे भी बहुत अहम लगी।
यह हमेशा से दोनों रहा है। वो कानून के औजार इस्तेमाल करता है, लेकिन एक राजनीतिक माहौल में काम करता है, उसमें नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं और उसके फैसलों के नतीजे गहरे राजनीतिक होते हैं। इन दोनों पहचानों के बीच का यही स्थायी अनसुलझा तनाव कोर्ट की असली कहानी है।
दूसरा बड़ा संदेश है न्यायिक शक्ति की नाजुकता और उसकी वैधता का महत्व। जैसा हमने पहले भी कहा, कोर्ट की ताकत भरोसे पे टिकी है, उसकी अपनी भी सेना नहीं है।
हाँ, ये भरोसा परंपरा से, तर्कों से और कुछ हद तक राजनीतिक समझदारी से बनता है। लेकिन अगर लोगों को लगे कि कोर्ट पक्षपात कर रहा है या सिर्फ राजनीति कर रहा है, तो ये भरोसा टूट सकता है। और अगर कोर्ट की वैधता खत्म होती है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।
ग्रीनहाउस लिखती भी हैं, कोर्ट का अधिकार विरोधाभासी है, अपने फैसलों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं। ये स्वीकृति ही न्यायिक वैधता की मुद्रा है, जिसे हर फैसले के साथ अर्जित करना पड़ता है।
बिल्कुल। तीसरा, कोर्ट एक मानवीय संस्था है। वो नौ भगवान नहीं, नौ इंसान हैं। उनके अपने विचार, पूर्वाग्रह, रिश्ते, पसंद नापसंद है। किसी केस का नतीजा सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर कर सकता है कि चीफ जस्टिस कैसे नेतृत्व करते हैं, कौन सा जज अपनी बात मनवाने में माहिर है, या उस दिन जजों का मूड कैसा है।
ये सुनने में अजीब लगे पर यह हकीकत का हिस्सा है।
चौथा
चौथा कोर्ट एक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील लगातार विकसित होने वाली संस्था है। इसकी भूमिका, इसके काम करने का तरीका, संविधान की इसकी व्याख्या, सब कुछ समय के साथ बदला है और बदलता रहेगा। ये समाज से कटकर नहीं बल्कि उसके साथ संवाद करते हुए चलता है। समाज बदलता है तो कोर्ट पर असर पड़ता है और कोर्ट के फैसले समाज को बदलते हैं। एक दो तरफा रास्ता है ये।
और पांचवा जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वो है कोर्ट की एजेंडा तय करने की शक्ति, यानी गेटकीपिंग।
हाँ, रूल ऑफ फोर वाली बात।
हाँ, हजारों केस में से किन चंद मामलों को सुनना है ये चुनकर कोर्ट तय करता है कि देश किन कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर बहस करेगा। ये उसकी नकारात्मक शक्ति है। न सुनने का फैसला भी बहुत शक्तिशाली होता है।
ये सारे विचार हमें सुप्रीम कोर्ट और शायद किसी भी देश की न्यायपालिका को एक नई नज़र से देखने में मदद करते हैं।
बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इन बातों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या लेना देना? हम भारत में बैठकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की इन बातों से क्या सीख सकते हैं?
हाँ, ये ज़रूरी सवाल है।
पहला तो ये कि हम ज़्यादा जागरूक नागरिक बन सकते हैं, है ना? जब हम अपने देश की अदालतों, जजों की नियुक्तियों या बड़े फैसलों के बारे में खबरें पढ़ते या सुनते हैं तो हम सतही बातों से आगे जाकर सोच सकते हैं।
बिल्कुल। हम सोच सकते हैं कि क्या यहाँ भी कानून और राजनीति का वैसा ही तनाव है? हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति कैसे होती है? क्या हमारे कोर्ट की वैधता भी जनता के भरोसे पर टिकी है?
हाँ, दूसरा, हम समझ सकते हैं कि न्यायिक नियुक्तियाँ क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। जब नेता जजों को चुनते हैं तो वो सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं चुन रहे होते,
बल्कि वो आने वाले कई सालों के लिए देश के कानून की दिशा तय कर रहे होते हैं। ये हमें चुनावों के महत्व को भी समझाता है, क्योंकि चुने हुए नेता ही अक्सर जजों की नियुक्ति करते हैं या उस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
तीसरा, सामाजिक बदलावों को लेकर हमारी समझ थोड़ी यथार्थवादी हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए बस एक कोर्ट केस जीतना काफी है।
हाँ, पर ऐसा होता नहीं है अक्सर। ग्रीनहाउस की किताब दिखाती है कि अदालती जीत एक शुरुआत हो सकती है, पर असली बदलाव के लिए लंबा संघर्ष, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है।
चौथा, हम कानूनी फैसलों पर ज्यादा संतुलित तरीके से सोचना सीख सकते हैं। अक्सर हम किसी फैसले को सिर्फ इसलिए पसंद या नापसंद करते हैं क्योंकि वो हमारी राय से मेल खाता है या नहीं।
सही बात है।
लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि फैसले के पीछे के कानूनी तर्क, पिछले फैसलों का हवाला, जिसे स्टारे डिसिसिस या प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी पिछले फैसलों का सम्मान करने का सिद्धांत, और जज के अपने न्यायिक दर्शन को समझना भी जरूरी है।
और पांचवा, हम अपनी न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के कामकाज को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम समझते हैं कि ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, तो हम उनके बारे में होने वाली बहसों में ज्यादा जिम्मेदारी से हिस्सा ले सकते हैं। सही कहा, अक्सर ये संस्थाएं हमें बहुत दूर की और जटिल लगती हैं, लेकिन लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझना हम सबके लिए जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था समाज का आईना होती है, उसकी ताकतों का भी और उसकी कमजोरियों का भी। ये कोई परफेक्ट मशीन नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली एक जटिल व्यवस्था है जो लगातार कानून, राजनीति और समाज के बदलते समीकरणों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। और उसकी सबसे बड़ी पूंजी है लोगों का भरोसा, यानी उसकी वैधता।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये जानना रहा कि कैसे जजों के व्यक्तिगत विचार और आपसी रिश्ते भी फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। वो बोतल में 9 बिच्छू वाली बात और ये विचार कि कोर्ट का फैसला अंतिम होते हुए भी एक तरह से समाज के साथ एक लंबी बातचीत का हिस्सा होता है, ना कि उसका अंत। ये संस्था उतनी रहस्यमय नहीं है जितना हम सोचते हैं, अगर हम उसके इंसानी पहलू को समझें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।